वरना यूजुअली जब इंसान सिर्फ कुरान पढ़ रहा होता है, उसका तर्जुमा पढ़ रहा होता है, तो बहुत से लोग कहते हैं कि अब फलों का जिक्र क्यों आ रहा है दरमियान में. एक तरफ करिया की कहानी थी, एक तरफ फलों का जिक्र था, फिर कश्ती की बात थी, फिर सूरज चांद की बात थी, फिर जोड़ों की बात थी. सो ये इतना आगे पीछे चीजें क्यों हो रही हैं? देखिए, याद रखें, कुरान का एक बड़ा चंक है आयात का, जो आपको फौरन अमल के ऊपर नहीं लेकर जाता, बल्कि वो पहले आपको सोचने पर मजबूर करता है. ये जो तीसरा हिस्सा है सूरत यासीन का, ये आपके माइंड को ट्रिगर कर रहा है, इंटेलेक्ट को ट्रिगर कर रहा है, कि आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है कि देखो अपने आसपास निशानियां देखो, अपने आसपास की नेमतों पर गौर करो. कुरान में कितना आता है, लअल्लकुम ततदक्करून, ताकि तुम नसीहत हासिल करो, लअल्लकुम ततफक्करून, ताकि तुम इसके ऊपर डीप रिफ्लेक्शन करो, लअल्लकुम ताकिलून, ताकि तुम अपनी इंटेलेक्ट को इस्तेमाल करो. तो कुरान में बास आयात आती हैं फौरन अमल करने वाली. अकीमुस्सला, नमाज कायम करो. उदखुलु फिस्सिल्म काफा, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ. ये वो आयात हैं जिसमें आपको फौरन पता चलता है कि आपने कोई एक्शन करना है. ये जो भी आपने सूरत यासीन का तीसरा हिस्सा पढ़ा है, जब आप कुरान से इसको पढ़ती हैं और तर्जुमा पढ़ती हैं, तो ये आपको बताता है कि ये आपको एक बहुत डीप रिफ्लेक्शन की तरफ लेकर जा रहा है. जो हुक्म होता है अकीमुस्सला व आतुज़्ज़का, उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको एक ही हुक्म मिलता है. जो रिफ्लेक्शन की आयात होती है, उसमें अमल के कई लेसन्स होते हैं. ये तो हमारे इल्म की कमी होती है. हम कहते हैं कि क्यों इतनी सारी बीच में फलों की आयतें, बागात की आयतें, चश्मों की आयतें, कश्तियों की आयतें अचानक से आ जाती हैं. तो ये अल्लाह ताला ने मुझे और आपको तदब्बुर के लिए मुकाम दिया है. अल्लाह की एक तरह से शिकायत है कुरान में, अफला या तदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अकफालुहा. क्या ये कुरान पर तदब्बुर नहीं करते, या इनके दिलों पर ताले पड़े हुए हैं, या इनके दिलों में जंग लग चुके हैं? अल्लाह ने दिल, अल्लाह ने अक्ल सोच समझ के लिए दिया है. अब यहाँ पर टाइम नहीं है, वरना आप कहते हैं कि अम अला कुलूबिन अकफालुहा में अल्लाह ताला ने ये क्यों नहीं कहा अम अला कुलूबिन अकालुहा, उनकी अक्लों पर पड़ताले पड़े हुए, दिल सोचने की तरफ क्यों गया? इसलिए कि याद रखें, इंसान के लिए उसकी ड्राइविंग सीट पर उसका दिल बैठा हुआ होता है. आपकी अक्ल में बहुत बड़ी बड़ी थ्योरीज और लॉजिक्स होते हैं, आपको सब पता होता है, लेकिन अगर आपका दिल ना चाह रहा हो, आप नहीं करते. मिसाल के तौर पर, आपको मालूम है कुरान पढ़ना चाहिए, रमजान में कुरान की तिलावत करनी चाहिए, रमजान में कुरान को समझना चाहिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग हासिल करनी चाहिए. फर्ज करें आप नेबर में रहते हैं इस घर के, आपको सब पता है कि ये कुरान का महीना है, ये कुरान के शुक्र का महीना है, ये इबादत का महीना है, ये सोकर नहीं गुजारा जाता, ये मेहनत करके गुजारा जाता है, सब पता है. बट आपका दिल नहीं चाह रहा क्लास में आने को. आप आएंगी सिर्फ इसलिए कि आपको इन्फॉर्मेशन बहुत है? इन्फॉर्मेशन आपको अमल पर नहीं दौड़ाती, आपके दिल की इंक्लिनेशन आपको अमल पर दौड़ाती है. हम में से किसको नहीं पता मुसलमान औरत के ऊपर अल्लाह ताला ने क्या चीजें फर्ज की हैं? सबको पता है, विदाउट अ डाउट पता है. फिर मैं अमल क्यों नहीं करते? दिल नहीं चाहता. कोई भी नहीं ये कहेगा कि मैं नहीं मानती. बस लोग होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो कुरान की महफिल में आके बैठ जाते हैं, मेरा ईमान है, वो नहीं कहते मैं नहीं मानती. वो जो मैं नहीं मानती वाली कैटेगरी होती है, वो बाहर होती है. और अल्हम्दुलिल्लाह जब वो भी कुरान के सामने आकर बैठ जाती है, अल्लाह उनके भी दिलों को खोल देता है. लेकिन इंसान फिर अमल पर क्यों नहीं आते? दिल तैयार नहीं होते. जब दिल तैयार हो जाते हैं, तो इंसान बड़े बड़े काम कर जाता है. इब्राहिम अलैहिस्सलाम अगर अपनी अक्ल को सामने रखते, तो कभी आग में छलांग ना लगाते. कैटापुल में डाल के उनकी कौम ने उनको आग में फेंका. अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अक्ल की बेसिस पर बात करते और दिल की तरफ तवज्जो ही ना देते, अपने अल्लाह और रब से कनेक्शन और इश्क को बिल्कुल गौर ही ना करते, तो कभी भी आग में छलांग लगाने को तैयार ना होते. ये दिल होता है जो कुर्बानी की तरफ आपको ले जाता है. ये दिल होता है जो आपको सब्र की तरफ ले जाता है. सब्र इज नॉट अ रैशनल इमोशन. एक थप्पड़ मारे दिल चाहता है दो थप्पड़ लगाओ आगे से. अकल तो यही कहती है, उसने तुम्हें एक मारा, तुम दो मारो. हमारे यहां मुहावरा क्या है उर्दू में, ईंट का जवाब. हमने तो बचपन से यही सीखा, किसी ने तुम्हें एक सुनाई, तुम दो सुनाओ. आप कहती है इसने मुझे सुनाई, सुना के जाएगी कहां, अभी सुनाती हूं. ये अकल कहती है. दिल क्या समझाता है? सबर, फॉरगिवनेस, माफी, रब की खातिर माफ कर दो. इसलिए नहीं लोगों को माफ करें कि वो सॉरी कह रहे हैं, इसलिए माफ करें। सूरह नूर में आता है, अला तुहिब्बून अल्लाह अन यग़फिरा लहुम, क्या तुम ये पसंद नहीं करोगे कि अल्लाह तुम्हें कयामत के दिन माफ कर दे, तो माफ कर दो लोगों को। ये सबर का इंक्लिनेशन दिल से अटैच है, सबर दिल की स्टेट है, दिमागी स्टेट नहीं है सबर। दिमाग तो कहता है कोई जरूरत नहीं है सबर करने की, बिला वजह अपने आप को मुश्किल में डालोगी, छोड़ दो। जो लोग तुम्हारी परवाह नहीं करते तुम भी उसकी परवाह ना करो, जो तुम्हें बातें सुनाते हैं क्रिटिसिज्म करते हैं तुम भी उनसे मिलना छोड़ दो। ये दिमाग सिखाता है, दिल क्या कहता है, नहीं अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलो और अल्लाह की मदद के साथ लोगों को माफ कर दो। ये है कुरान की वो आयात जो आपके माइंडसेट को रीशेप करते हैं। कुरान पढ़ें अपने थिंकिंग पैटर्न को बदलने के लिए, अपने थिंकिंग पैटर्न को रीशेप करने के लिए। अब तीसरा हिस्सा जो आपको कुरान की हिकमतों पर आयात पर नजर आ रहा था, चौथा हिस्सा जो आपको आएगा नजर, ये छोटा सा एक हिस्सा है 3 आयात का, और इसमें आपको जिक्र मिलेगा उन लोगों का जिन्होंने सोचने का इनकार कर दिया, दे रिफ्यूज टू थिंक। तीसरा हिस्सा पूरा क्या कह रहा था, सोचो, आयात देखो, अल्लाह के मोजज़ात देखो, मिरेकल्स देखो, अल्लाह की फरमा बरदारी की तरफ आओ। अब ये जो आगे लोग आ रहे हैं ये वो हैं जिन्होंने सोचने समझने और अपने माइंडसेट को रीशेप करने का इनकार कर दिया। देखें पहला हिस्सा कनेक्टेड था वही से, आयत नंबर 9 को याद कर लीजिए, वमिन बैनी अईदिहिम सद्दन व खल्फिहिम सद्दन फअग्शैनाहुम फहुम ला युबसिरून। पहला हिस्सा था सूरत यासीन का वही से कनेक्टेड, कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा हिस्सा था तारीख से कनेक्टेड, खल्फिहिम वाला। तीसरा हिस्सा था द वर्ल्ड अराउंड यू, क्या था वो, बैना अईदिहिम। तीनों हिस्सों में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ इंसानों को मुख्तलिफ डायरेक्शन से अपने दीन पर सोचने की दावत दी। अब जो चौथा हिस्सा आ रहा है उसमें उन लोगों का जिक्र है जो सोचना ही नहीं चाहते, ना कुरान और वही पर गौर करना चाहते हैं, ना तारीख पर गौर करना चाहते हैं, ना अपने सामने मौजूद नेमतों और दुनिया पर गौर करना चाहते हैं। आयत नंबर 45 में फरमाया, वَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, और जब उनसे कहा जाता है, اِتَّقُوا, तक्वा करो, مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ, यहां तक्वा करो का तर्जुमा असल में आता है खौफ करो, डरो। जब उनसे कहा जाता है खौफ करो उससे या बचो उससे जो तुम्हारे आगे है और जो तुम्हारे पीछे है, لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, ताकि तुम पर रहम किया जा सके। अब यहां पर जो आयत आ रही है आपका माइंडसेट क्लियर है कि ये किसके लिए आ रही है, वो इंसान जो अपनी तारीख, दुनिया, करंट दुनिया, हाल और मुस्तकबिल और कुरान से इंस्पिरेशन लेने के लिए तैयार नहीं है बिल्कुल भी। तो कहा जा रहा है कि जरा अपने आगे और पीछे की चीज को देख लो। आगे और पीछे का कॉन्सेप्ट आयत नंबर 9 के हवाले से क्या है, बैना अईदीहिम व खल्फिहिम, माजी और हाल और मुस्तकबिल, उन वॉल्स को देख लो। ये बिल्कुल जैसे ऐसे बात है इस आयत में, मुफस्सरीन कहते हैं कि जैसे ये कहा जा रहा हो आयत के इस हिस्से में, सूरत के इस हिस्से में, कि देखो सूरत यासीन के सेक्शन नंबर 1 और 2 को देख लो। अपने देखो अल्फाज वही आए ना, मा बैना अईदीकुम व मा खल्फकुम, जो कुछ तुम्हारे सामने और जो कुछ तुम्हारे पीछे उससे डरो। बिल्कुल जैसे आयत सूरत के पहले और दूसरे पोर्शन के ऊपर थोड़ी सी अटेंशन करो। आपको इसकी लिंग्विस्टिक अरेंजमेंट अगर आयत की समझ आती हो, मैं तर्जुमा करूंगी, जिनको ग्रामर नहीं आती उनको लिंग्विस्टिक अरेंजमेंट समझ आएगी। यूजुअली जब ऐसी आयत आती है जिसमें आता है वाइदा कीला लहुम, जब उनसे ये कहा जाता है तो आगे यूजुअली आता है कालू, वो कहते हैं। जब उनसे कहा जाता है ये करो, कालू, वो ये कहते हैं, यानी वो बात नहीं करते जो कही जा रही है बल्कि वो कुछ और कहते हैं। अब इस आयत को देखें, वहां पर एक पार्ट तो है जब उनसे कहा जाता है वَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, अब आगे قَالُوا नहीं आ रहा, यानी यहां पर शर्त है, जवाब शर्त नहीं है। क्यों नहीं है? मुफस्सरीन के मुताबिक उनका जवाब, उनका डिनायल इतना ऑब्वियस था कि अल्लाह ताला ने उनके जवाब को मेंशन करना भी मुनासिब नहीं समझा। इतने भटके हुए लोग, इतना वही से गाफिल लोग, इतना दुनिया की नेमतों से गाफिल लोग, इतना माजी को इग्नोर करने वाले लोग, इतना नेगेटिव एटीट्यूड है इन लोगों का। ये एक अल्लाह ताला का, समझ लें, इस आयत में इमोशन का इजहार है, नाराजगी के इमोशन का इजहार है, कि अल्लाह ताला ने उनका रिस्पॉन्स भी यहां पर मेंशन नहीं किया। कि जब उनसे कहा जाता है कि अपने फ्रंट और बैक को सोचो, दुनिया और माजी से फायदा उठाओ, तो वो क्या कहते हैं, वो आगे कुछ आया ही नहीं। ये अल्लाह की नाराजगी का इजहार है कि बताने की जरूरत भी नहीं है। समझ लें जैसे डॉट 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 आते हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही है। एक इसमें मफहूम ये किया गया कि जब उनसे कहा जाता है कि देखो अपनी जिंदगी से कोई सबक हासिल करो, दूसरों की गलतियों से सबक हासिल करो, अपनी आखिरत की फिक्र करो, तो बिल्कुल चुप रहते हैं, कुछ भी नहीं बोलते। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है, जैसे आप बाज लोगों को आप बहुत दिल से दुआ करके अल्लाह की बात बताना शुरू करते हैं, और वो सुनते रहते हैं चुप करके, सर नीचे करके सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, और उसके बाद ऐसे लगता है जैसे उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। बैक टू स्क्वायर वन, कोई और खातून नजर आएंगी, फिर उन्हीं जोक्स में और उन्हीं गुफ्तगू में इन्वॉल्व हो जाएंगे जिसके ऊपर आप उनको इतनी देर से जो थी वो खुतबा दे रही थी कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना। आप बात लोगों को बता रहे होते हैं गइबत अच्छी बात नहीं है, अल्लाह को पसंद नहीं है, गइबत में आप दूसरे इंसान की रिस्पेक्ट खत्म कर देते हैं, उसकी डिग्निटी खत्म कर देते हैं। वहीं बैठे बैठे उसी महफिल में जिनको आप बता रही होती हैं, उनके साथ एक और खातून आके बैठती हैं, और वहीं देर एंड देन वो आपको दिखाने के लिए गइबत करना शुरू कर देते हैं। तो बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनके सामने मिसालें आती हैं, माजी से भी, हाल से भी, दुनिया से भी, लेकिन वो उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करते, सुने अनसुने कर देते हैं। बिल्कुल जैसे बाज महफिलों के अंदर दीन पढ़ने पढ़ाने वाले पहुंच जाते हैं तो वहां के लोग उनको बिल्कुल ऐसा फील कराते हैं जैसे वो वहां कोई है ही नहीं। सुलेमानी टोपी पहनी हुई उन्होंने, कभी फील किया आप लोगों ने, जब लोग आपको बिल्कुल लिफ्ट ना करा रहे हो, कभी भी नहीं फील किया? अच्छा, तो इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है। कभी आपका हाल हुलिया ऐसा हो जो बाकी लोगों का हाल हुलिया नहीं है, और फिर उसके बाद आप जाकर बैठे हैं और लोग बिल्कुल आपको ऐसे डील करें कि जैसे आप आए ही नहीं, सलाम करके अपनी बातों में बिजी हो गए। तो बाज लोग ऐसे होते हैं कि जिनके सामने हक खुल जाता है, जिनके सामने तालीम आती है, लेकिन वो उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं करते, ना हाँ ना ना, कंप्लीट खामोशी। एक पॉइंट ऑफ व्यू उसके लिए ये रखा गया है, इत्तकू मा बैना अईदीकुम, में दोनों चीजें हैं, आपकी जो करंट दुनिया आपके सामने है, आपकी नेमतें, आपका हाल, और इत्तकू मा बैना अईदीकुम, इंसान के सामने उसका मुस्तकबिल भी होता है। तो अपने मुस्तकबिल को देखो, उसकी फिक्र करो, डरो आने वाले वक्त से। अगर आज तुमने वही के ऊपर रिस्पॉन्ड ना किया तो कहीं आने वाला वक्त तुम्हारे खिलाफ विटनेस ना हो जाए। इत्तकू मा बैना अईदीकुम में एक और चीज है, इंसान के सामने, इंसान के दोनों हाथों के दरमियान, इसका लिटरल ये अरबी का मुहावरा है, बैना अईदीकुम, तुम्हारे दोनों हाथों के दरमियान। आप अपने दोनों हाथ फैलाएं, आपके दोनों हाथों के दरमियान में कौन है, कौन है? आप खुद हैं। आप खुद हैं, आपके दोनों हाथों के बाजुओं के दरमियान में आप खुद हैं। इत्तकू मा बैना अईदीकुम, ये जो अल्लाह ने तुमको जिस्म दिया है, ये जो अल्लाह ने तुम्हें एक आइडेंटिटी दी है, इसको अल्लाह ने जहन्नुम में जलने के लिए नहीं बनाया। अल्लाह ने इंसानों को जहन्नुम में जलने के लिए पैदा नहीं किया। डरो उस वक्त से कि जब तुम्हारा ये जिस्म, तुम्हारा ये फिजिकल बीइंग आग में डाल दिया जाएगा। आपके दोनों हाथों के दरमियान में आपका दिल होता है, डरो उस दिल के करप्ट हो जाने से, उस दिल के फसाद में बर्पा हो जाने से, उस दिल के अल्लाह से दूर हो जाने से। तो कई मीनिंग इस इत्तकू मा बैना अईदीकुम के किए गए हैं। इत्तकू बड़ा गहरा लफ्ज है, और अरबी जुबान में एक तो हम इसका सिंपल तर्जुमा करते हैं उर्दू में, तकवा इख्तियार करो, इत्तकू को हम सिंपल तकवा कह देते हैं। एक हम कहते हैं परहेजगारी इख्तियार करो, इत्तकू है सो मैनी इन डेप्थ मीनिंग। मिसाल के तौर पर आपका बच्चा कहता है अम्मा तकवा क्या होता है, तो आप कहेंगे बेटा परहेजगारी, इतनी गाढ़ी उर्दू समझ ही ना आ जाए आपके बच्चे को, समझ आएगी परहेजगारी आपके बच्चे को? तकवा क्या होता है? तकवा में बहुत से लिंग्विस्टिक मीनिंग्स आते हैं। तकवा विकाया से है, हिफाजत। एक इसका बिल्कुल मीनिंग होता है हिफाजत करना, जिसमें जिससे आप एक्सट्रैक्ट करती हैं बचना, बचना। जैसे आप दुआ करती हैं रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना व कीना, और तू बचा हमें, वाव अलग है, काफ जेर की अलग है, और नून अलिफ ना अलग है। ये जो सिर्फ काफ जेर की होता है ये तकवा से है। आप तर्जुमा करती हैं अल्लाह तू बचा हमें, तो एक विकाया तकवा का बेसिक मफहूम होता है बचना, अपनी हिफाजत करना। किस चीज से हिफाजत करना? अल्लाह की नाफरमानी से बचना, अल्लाह की रहमत के दूर हो जाने से बचना, अल्लाह के दीन से रिबेलियन की तरफ जाने से अपनी हिफाजत करना। एक विकाया का मतलब होता है बचना, अल्लाह को डिसअपॉइंट करने से बचना। जो मोमिन होता है वो कभी भी नहीं चाहता कि उसका अल्लाह उससे डिसअपॉइंट हो जाए, वो अल्लाह के एक्सपेक्टेशंस पर पूरा ना उतरे। हम लोग अक्सर तकवा का ट्रांसलेशन खौफ भी करते हैं। देखिए, खौफ के लिए अरबी जुबान में रहबा आता है, खौफुन आता है, खशिया आता है, हमने पढ़े हैं पीछे। ये मुख्तलिफ लेवल्स हैं खौफ के। तकवा में आप खौफ इस तरह से ले सकती हैं, जब आप ये कहें कि मुझे डर लगता है, मुझे खौफ आता है कि कहीं अल्लाह मुझसे नाराज ना हो जाए। याद रखें, अल्लाह का खौफ, हमने बात की थी, अल्लाह से खौफ करना किसी भी और चीज से खौफ करने से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। जब आप अल्लाह से खौफ करते हैं, आप और अल्लाह के करीब जाते हैं, फफिरू इलल्लाह। जबकि आप सांप से, स्कॉर्पियन से, सेंटीपीड से, कॉकरोच से डरती हैं, तो आप उससे दूर भागते हैं। लेकिन अल्लाह का खौफ बंदे को अल्लाह के करीब कर देता है। तो अगर तकवे का मफहूम आप खौफ करेंगी, तो क्या खौफ है? कहीं मैं अल्लाह को डिसअपॉइंट ना कर दूं। एक मीनिंग है तकवा का इस एंगल से खौफ, कहीं अल्लाह डिसअपॉइंट ना हो जाए मुझसे। एक मीनिंग है बचना, बचत करना, अल्लाह की नाफरमानी से बचना। जैसे कुरान में आता है, वकैफ तत्तकून, तुम कैसे बचोगे, इन कफर तुम, अगर तुमने इनकार किया, यौमन उस दिन, यजअलुल विल्दान शीबा, वो कयामत का दिन जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा। कैसे बचोगे तुम उस दिन की सख्ती से? सो बचने और हिफाजत के मफहूम में भी आता है। एक आता है तकवे का मफहूम पूरी तैयारी करना। जब अल्लाह कह रहा है इत्तकू मा बैना अईदीकुम, अपने हाल का भरपूर फायदा उठाते हुए अपने मुस्तकबिल की भरपूर तैयारी कर लो। दिस इज अनदर मफहूम इन इत्तकू मा बैना अईदीकुम, अपने मुस्तकबिल के लिए तैयार हो जाओ। कुरान में आता है व तजव्वदू फइन्ना खैर ज़ाद तक्वा, रास्ते की, जहां हज के अहकाम आते हैं, रास्ते की तैयारी करो, और बेहतरीन ज़ादे राह क्या है? तकवा है। तो तकवा इस मफहूम में भी आता है कि पूरी तैयारी करो। अल्लाह ताला ने वॉर्न कर दिया है कि देखो तुम्हारा हाल तुम्हारे सामने है, इसको इग्नोर करोगे तो मुस्तकबिल भी तुम्हारा जो है वो इग्नोर हो जाएगा। तो अपने मुस्तकबिल में शर्मिंदा होने से बचने के लिए बेहतर है कि आज अल्लाह का तकवा इख्तियार कर लो। लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। तुरहमून उसी रूट वर्ड से है जिससे अल्लाह का नाम रहीम आता है, रहमान आता है, रहामीम। रहीम, रहमान, तुरहमून रहम से बना है। रहम कहते हैं अरबी जुबान में वूम को, औरत का रहम, रा की जबर के साथ, औरत का वूम। आप देखें, अल्लाह ताला ने जब ये रहमत का लफ्ज इस्तेमाल किया है जहां भी कुरान में, चाहे अपने नाम के तौर पर, चाहे अपनी सिफत के तौर पर, चाहे इंसानों पर रहम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक जेनेरिक टर्म के तौर पर, अल्लाह ताला ने इसको हमेशा माँ और बच्चे से कनेक्ट किया है। लेकिन हमें समझ उस वक्त आएगा जब हम लिंग्विस्टिकली राहा मीम को समझेंगे। माँ और बच्चे का कनेक्शन, माँ और बच्चे का ताल्लुक इज अनयूजुअल। दुनिया में कोई आपको तकलीफ देता है तो आपको उससे नफरत हो जाती है और मोहब्बत होने लग जाती है। सच बताएं, दुनिया में कोई आपको हर्ट करता है, बार बार क्रिटिसाइज करता है, आपको बुली करता है, आप पर गुस्सा करता है, तो जो इंसान बार बार आपको तकलीफ देगा, यू विल स्टार्ट हेटिंग दैट पर्सन। इट्स द नेचुरल माइंड सेट। आपको उस इंसान से नफरत हो जाएगी, और अगर आप उस इंसान से नफरत नहीं करेंगी, आप कहेंगे नहीं मैं अल्लाह की खातिर छोड़ दूंगी, तो एटलीस्ट इंसान उसके शर से बचने के लिए उससे दूर हो जाता है। ऐसा होता है एंड इट्स अ नेचुरल थिंग, और ये होना भी चाहिए। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मफहूम के मुताबिक मोमिन एक सुराग से बार बार नहीं डसा जाता। बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस हदीस फॉर द रहमी रिश्ते। हम रहमी रिश्तों पर इसको अप्लाई करते हैं, हम कहते हैं मोमिन एक सुराख से बार बार नहीं डस जाता, अब मैं अपनी नंद जिठानी देवरानी से नहीं मिल सकती। आपके रहमी रिश्ते आपके शौहर के इन रिश्तों से अटैच्ड हैं, आप अपने भाई बहन से रिश्ता नहीं काट सकती चाहे उन्होंने आपको कितना भी नुकसान पहुंचाया हो। हाँ यकीनन आप डिस्टेंस पर आ जाएंगी बट यू विल मेंटेन द रहमी रिश्ता, आप उस कनेक्शन को मेंटेन रखेंगी। सही, हम एक जेनेरिक टर्म में बात करते हैं, इस्लामिक जेनेरिक टर्म में बात करता है कि इंसान जिस रास्ते से ठोकर खा लेता है दोबारा उस रास्ते पर नहीं जाता है। तो अल्लाह ताला ने ये एक निज़ाम एक माइंडसेट इंसान का बनाया है कि जो इंसान को हर्ट करता है इंसान उससे दूर होना शुरू हो जाता है। अब आप में से जितनी भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर माएँ बैठी हैं, जब आप प्रेग्नेंट हुई थी तो आपके बेबी ने आपको हर्ट किया था? पहले दिन से कंसीव करने से लेकर नौजिया से लेकर 8th मंथ में जो किक्स लगती हैं उन किक्स तक और फिर डिलीवरी, और डिलीवरी के बाद फिर जगाना रातों में, और फिर जगाने के बाद रुलाना माँ को, बच्चा अलग रोता है माँ अलग रोती है जब ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे होते हैं, छोड़ते ही नहीं आपकी जान, बैठे हैं बैठे हैं बैठे हैं बैठे हैं, और आपकी जिंदगी कॉन्स्टेंटली बच्चे के आसपास उसके रिवॉल्व कर रही होती है। आप देखें बच्चा माँ को कितना हर्ट करता है, प्रेगनेंसी में भी हर्ट कर रहा होता है, माँ के खाने पीने में इतनी प्रॉब्लम हो जाती है, उसको नौजिया होने लग जाता है, उसके जो है वो हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसके टेस्ट बड डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो बच्चा जो उसको इतना हर्ट कर रहा होता है वो उसकी गोद में आता है, वो उसको दुनिया में सबसे प्यारा हो जाता है। बस शौहर बहुत जेलस होते हैं, पहले तो तुम मुझे इतना टाइम देती थी, अब तो हमारे पास लिफ्ट ही नहीं कराती हो मुझे, अब तो मैं अपने बच्चों के अलावा मैं नजर ही नहीं आता। ऐसा होता है ना, ये अल्लाह ने माँ और औलाद का रिश्ता रखा है, ये वूम का रिश्ता है जिसके कनेक्शंस बड़े स्ट्रांग होते हैं। और अल्लाह ने जहां जहां रहमत का जिक्र किया है अल्लाह ताला उस रहमत के पीछे इस कॉन्सेप्ट को मुझे और आपको याद कराना चाहते हैं। और ये कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर दुनिया में माँ बच्चे की तकलीफ के बावजूद, बच्चे की तकलीफ देने के बावजूद उससे नफरत नहीं कर सकती है, तो देखो तुम्हारा रब तुम्हारे गुनाहों के बावजूद तुमसे मोहब्बत करेगा अगर तुम उसका तकवा इख्तियार कर लोगे। देयर इज अ कंडीशन, इत्तकु मा बैना अईदीकुम, चाहे तुम्हारे कितने भी गुनाह क्यों नहीं होंगे, द मोमेंट यू विल डू तौबा, द मोमेंट यू विल अडॉप्ट तकवा, अल्लाह तुमसे माँ से बढ़कर मोहब्बत करने लग जाएगा। अल्लाह इग्नोर कर देगा हमारे सारे गुनाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक एक मरतबा एक शख्स आपके पास आया और उसने कहा या रसूल अल्लाह मैं बहुत शराब पीता हूँ, अगर मैं छोड़ दूँ तौबा करूँ तो क्या अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देगा अगर तुमने सच्ची तौबा की। उस शख्स ने कहा ठीक है मैं सच्ची तौबा करता हूँ, मैं आइंदा शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। फिर उसने उसी सिटिंग में फिर पूछा अल्लाह के रसूल से अच्छा अगर मेरा पाँव स्लिप हो जाए और मैं फिर शराब पीऊं और मैं फिर माफी मांगूं तो क्या अल्लाह मुझे फिर माफ कर देगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ अगर तुम्हारी तौबा सच्ची होगी अल्लाह फिर माफ कर देगा। और रिवायात में आता है, नरेशंस में आता है, उस शख्स ने 8 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही जुमले रिपीट किया कि अगर फिर मैं गुनाह कर दूं? आपने कहा अगर तुम्हारी तौबा सच्ची होगी अल्लाह माफ कर देगा। फिर जब उसने 8वीं दफा दोबारा ये बात पूछी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका मफहूम आता है बंदा अपने रिग्रेट की वजह से माफी मांगते मांगते थक जाता है, अल्लाह माफ करते करते नहीं थकता। अल्लाह रहम करने वाला है, तो रहमून है, हाँ उसकी रहमत एक्टिवेट होती है आपकी तौबा और तकवे से। यहां पीछे कॉन्स्टेंट ये कॉन्सेप्ट पढ़ते आ रहे हैं कि अल्लाह की शान रहीमी का नाजायज फायदा मत उठाना। अल्लाह ताला ने यहां भी उसकी एक झलक दिखा दी कि देखो तुम्हारे सामने अल्लाह की बेलौस मोहब्बत आएगी अगर तुम सिराते मुस्तकीम पर तकवा के रास्ते पर आ जाओगे। आगे फरमाया आयत नंबर 46, वमा ताअतीहिम मिन आयतिम मिन आयाति रब्बिहिम इल्ला कानू अन्हा मुअरिदीन, और उनके पास कोई आयत नहीं आती उनके रब की आयत में से सिवाय ये कि वो उससे मुंह मोड़ने वाले हैं, यानी वो डिलिबरेटली आयत को वही को इग्नोर करते हैं। यहां आया आयतन, अब आपको अल्हम्दुलिल्लाह आयतन के मफहूम समझ आ गए हैं, कोई भी मेरेकल कोई भी साइन कोई भी अलामत कोई भी ऐसी अलामत जिससे आपको कोई और हायर चीज याद आ जाए। अल्लाह की बनाई हुई हर मखलूक में निशानी है अल्लाह तक पहुंचने के लिए, हर वो निशानी अलामत जिससे आपको एक हायर चीज हायर हस्ती याद आ जाए। तो अल्लाह ताला ने बता दिया पीछे आए थे दो एंगल आयत नंबर 45 में। अगर आप आयत नंबर 9 को अपने जहन में रखें, मा बैना अईदीकुम और खल्फा मिन बैनी अईदीकुम व मिन खल्फिकुम आया था, सदन दोनों जगह पर सद है। तो वो दो बैरियर्स आयत नंबर 45 में आ गए थे। और तीसरा बैरियर जो आता है, ये हिस्सा किन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है? वो लोग जो सुनने को तैयार नहीं है। तो दो उनके सामने होते हैं, ना वो माजी से सबक सीखते हैं ना वो हाल और मुस्तकबिल से सबक सीखते हैं। और तीसरा आयत नंबर 46 में आ रहा है कि ये वही की अहमियत से भी फायदा नहीं उठाते, यानी हक तक पहुंचने के तीनों रास्ते इन्होंने ब्लॉक किए हुए हैं। ये वही कैटेगरी है जो शुरू में फरमाया था, लकद हक अल कौलु अला अक्सरिहिम, हक आने के बावजूद जो ना अमल में दौड़े फिर अल्लाह उनके दिलों पर मोहर लगा देता है। इन्होंने जानते बूझते इग्नोर किया। यहां पर लफ्ज आया ना मोरिदीन, ये होता है डिलिबरेट इनकार करना, जानते बूझते एराज करना, रुख मोड़ लेना। अगर आज कोई मुसलमान कुरान का पैगाम सुनने के बावजूद अमल ठीक नहीं करता तो स्कॉलर्स के मुताबिक वो मोरिदीन की कैटेगरी में आता है, एराज करने वाला, मुंह मोड़ने वाला। अगर आज कोई रिसोर्सेज होने के बावजूद कुरान का इल्म हासिल करने की तरफ आगे नहीं बढ़ता, अकल और शऊर रखने के बावजूद इल्म हासिल करने के लिए दीन का आगे नहीं बढ़ता, तो वो मोरिदीन की कैटेगरी में आता है। और फिर उसको डरना चाहिए कि कहीं उसके दिल पर मोहर ना लग जाए। बाज़ औक़ात आप देखें, लोगों को आप बड़ी बड़ी दलीलें देते हैं लेकिन आप देखते हैं कि आपकी दलील उनके इल्म के रास्ते को खोलने का बायस नहीं बनते। क्यों? इसलिए कि उन्होंने अपने आगे पीछे और अपने दिमागों में बैरियर्स लगाए हुए होते हैं। उन्हीं बैरियर्स के लगाए हुए लोगों का ही जिक्र इस हिस्से में आ रहा है। आगे फरमाया आयत नंबर 47, व इज़ा क़ीला लहुम अनफिकू, और जब उनसे कहा जाता है खर्च करो, मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, उसमें से जो तुम्हें अल्लाह ने रिस्क दिया है। अब आप देखें इज़ा क़ीला के बाद क्या आ रहा है, क़ाला। तो ये अंडरस्टूड उसलूब है कुरान का। आप देखेंगे जब कुरान में व इज़ा क़ीला आएगा तो आगे क़ालू या क़ाला आता है, यहां आया। वहां तो बिल्कुल चुप थे जब अल्लाह ने उनको निशानी बताई अपने रसूल के जरिए कि देखो अपने आसपास की निशानियों से सबक सीखो, तुम्हारी दुनिया खत्म होने वाली है, मताअन इलाहीन, तुम लिमिटेड टाइम के लिए इस दुनिया के अंदर हो, तुम्हें अल्लाह के सामने हिसाब किताब देना है। तो जुबानें बंद हो गई थी, बिल्कुल कोई जवाब नहीं दिया था, बिल्कुल खामोशी, ताकि ना बोले ना अमल करना पड़े। और यहां जब खर्च करने की बात आई, जब दुनिया कम होने की बात आई, तो फिर नहीं रुक सके। कहा कौल अल्लदीना कफरू, उन लोगों ने कहा जिन्होंने इनकार किया, लिल्लदीना आमनू, उन लोगों से जो कि ईमान लाए थे, अनुतइमु मल्लौ यशा अल्लाहु अतअमहु, क्या हम उनको खिलाएं जिनको अगर अल्लाह चाहता तो अल्लाह खिला देता, इन अंतुम इल्ला फी दलाल मुबीन, तुम सिर्फ और सिर्फ एक वाजे खुली गुमराही में पड़े हुए हो। अब आपको ये आयत पिछली आयत के हिसाब से जरा मुख्तलिफ लग रही है, अमल की लग रही है ना, अनफिकू आया, ये अमल आपको एकदम नजर आ रहा है और अमल में दूसरा इंसान इन्वॉल्व हो रहा है। अभी तक जितनी भी आयात आ रही थी वो आ रही थी तकवा मजबूत करने के लिए, ईमान मजबूत करने के लिए, अपने फेथ को फर्म करने के लिए। अब यहां अमल का कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, प्रैक्टिकलिटी की बात की जा रही है कि जब इनसे कहा जाता है कि देखो अल्लाह ने जो तुमको रिस्क दिया है उसमें से खर्च करो, अब कहां खर्च करो, क्या ये स्पेसिफाई किया था? मस्जिद में लगाओ, मदरसे में लगाओ, कुआं बनाओ, खाना खिलाओ, कुछ भी नहीं आया था आयत में, सिर्फ ये आया था कि खर्च करो। अब जब ये खर्च करने की बात आई तो इन्होंने ऑटोमेटिक जो इनका जवाब है वो क्या आया, क्या हम उनको खिलाएं जिनको अगर अल्लाह खिलाना चाहता तो खिलाते। अब आप सोचें ये आयत, ये रिस्पॉन्स कुरैश भी सुन रहे हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुन रहे हैं और सहाबा भी सुन रहे हैं। तो अब सहाबा ने इससे क्या अमल लिया होगा? अल्लाह ने तो यहां पर ना सुनने वाले का अमल बताया ना, कि जो सुनते नहीं है वो खर्च करने को तैयार नहीं होते, और दलील क्या देते हैं कि जिनको अल्लाह ने नहीं खिलाया हम उनको क्यों खिलाएं। तो आपके लिए और मेरे लिए और सहाबा के लिए इसमें क्या सबक था कि लोगों को खिलाओ, लोगों पर खर्च करो। लोगों पर खिलाने का मतलब क्या है? लोगों पर इन्वेस्ट करो, लोगों के लिए आसानियां करो, लोगों की मुश्किलात दूर करो, लोगों के लिए कोई सोशल एक्टिविटी करो। अनफिकू का मतलब यहाँ ये आ रहा है कि लोगों को फैसिलिटेट करो। अब सहाबा ने ये आयत सुनी, आप जानते हैं मक्की दौर में मिडिल इरा के अंदर ये सूरत नाजिल हुई, वहां मुसलमानों की मेजॉरिटी थी या माइनॉरिटी थी, तो जब सहाबा से ये कहा गया कि इस आयत के थ्रू तुम्हें ये हुक्म है अनफिकू खर्च करो, तो क्या सहाबा सिर्फ मुसलमान भूखों को खाना खिलाते या सिर्फ मुसलमान जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करते, या उनको ये कहा गया था कि विदाउट डिस्क्रिमिनेशन सब गरीबों की, मिसकीनों की, यतीमों की मदद करो? क्या ख्याल है आपका? सबकी मदद का बात है, याद रखें मुसलमान जब किसी मुसलमान की मदद करता है तो उसके दिमाग में क्या होता है? तकरीम, वलकद करमना बनी आदम। आप किसी को इसलिए नहीं खिलाती हूँ, उससे पहले पूछती हूँ तुम मुसलमान हो, अच्छा मैं तुमको खजूर का डब्बा देती हूँ, अच्छा तुम मुसलमान हो मैं तुमको अभी रूह अफ़ज़ा पिलाती हूँ। देखें रूह अफ़ज़ा पीने का तो सभी का दिल करता है, खजूर खाने का सभी का दिल करता है। ज़कात के बारे में एक अलग सिनेरियो है, इसके अलावा यहाँ पर ज़कात देने की बात नहीं, अनफिकू अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, निफली सदकात की बात है। और जब आप निफली सदकात दें तो लोगों के मजहब पूछ के नहीं दें, दीजिए किसी भी इंसान की मदद कीजिए, आपको क्या मालूम किस इंसान की दुआ अल्लाह के अर्श तक पहुंच जाए। जो दूसरों के मसले हल करने में लग जाता है अल्लाह उसके मसले हल करने में लग जाता है, और जिसके मसले हल करने में अल्लाह लग जाए उसके कामों के बनने का क्या कहना। आप और मैं क्या किसी का काम बनाएंगे या हम खुद अपने क्या काम बनाएंगे अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे कामों को बनाने वाला बन जाए। तो मुसलमानों को सहाबा को सिखाया गया और उनके जरिए हमें सिखाया गया कि गुड कॉजेस के ऊपर स्पेंड कीजिए, गुड कॉजेस पर लगाइए। कोई ऑर्फनेज चल रहा है उसको आप मदद कीजिए, कोई किसी ने स्कूल अडॉप्ट किया हुआ है उसकी मदद कीजिए, कहीं कोई कच्ची बस्ती में काम कर रहा है उसकी मदद कीजिए, और खूब सदका कीजिए। देखिए ज़कात एक मरतबा निकलती है साल में, पसंदीदा यही है कि ज़कात को एक साथ निकालिए। बात लोग कहते हैं हम ज़कात को महीना महीना करके थोड़ा थोड़ा करके निकालते हैं, अगर आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है देन यू कैन डू दिस, मगर अल्लाह ने अगर आपका हाथ वसी किया है और आपके लिए मुश्किल नहीं है, एक गो में ज़कात निकालिए, उसका एक अलग इम्पैक्ट आता है। आपको मालूम है ना ज़कात फ़र्ज़ है, और बाज़ मरतबा ज़कात भी आपकी लाखों में निकल रही होती है, तो ज़कात निकालते हुए भी इंसान का दिल अंदर से थोड़ा सा तो क्रंच करता है, करता है कि नहीं करता? दुनिया की मोहब्बत है ना दिल में भरी हुई, तो जो फर्ज सदका है वो निकालते हुए भी क्रंच करता है। जब हम अपनी जकात को जो हमने साल में एक मरतबा निकाल लिया उसको हम पूरे साल पर फैला लेते हैं, तो फिर निफली सदके की तो बारी ही नहीं आती है। कब करेंगे निफली सदका? हम कहेंगे हमने अपने एक एक लाख की जकात एक एक महीने के साथ अटैच की हुई है, हम हर महीने 1 लाख जकात निकालेंगे, अगर मैंने 12 लाख जकात देनी है साल में, तो फिर आप निफली सदका कब करेंगे? अगर आपकी कोई फाइनेंशियल मजबूरी है वो तो एक अलग सिनेरियो है, उसमें आप ये कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर मजबूरी नहीं है तो ज़कात एक गो में निकालिए, ढूंढिए जेन्युइन लोग जो ज़कात के लिए एलिजिबल हैं, राह चलते हुए उनको कोशिश करें सदका दें, ज़कात मत दें। कराची शहर के अंदर वैसे ही इतनी आवाम भर जाती है, उनको पता है इस वक्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा सदका और खैरात होता है, ज़ाहरी बात है ज़रूरतमंद है, लेकिन मेरा आपको मशवरा ये है कि वाइट कॉलर लोगों को ढूंढिए, खुद ढूंढिए, अपने खानदानों में ढूंढिए, मिलेंगे आपको अपने खानदानों में, एक्सटेंडेड फैमिलीज में मिलेंगे, अपने खानदानों में ढूंढिए, खुद जाइए, इज्जत एहतराम के साथ उनको अपनी ज़कात देकर आइए। और ज़कात देते हुए बताने की ज़रूरत नहीं होती कि ये ज़कात है, अगर आपको मालूम है कि वो साहिब ज़कात नहीं है, निसाब से नीचे हैं, तो आप उनको मोहब्बत इज्जत एहतराम के साथ अपनी ज़कात थमा कर आइए उनकी ज़रूरियात के लिए, और बताने की ज़रूरत भी नहीं होती है कि ये ज़कात है। अपने रिश्तेदारों को ज़कात देना अगर वो डिज़र्विंग है सबसे अफजल जगह है, वरना फिर माशरे में वो वाइट कॉलर फैमिलीज ढूंढिए जिनके लिए इस वक्त अपनी डे टू डे अर्निंग के ऊपर सिर्फ गुजारा हो रहा है और उनकी कोई एसेट्स नहीं है और उनके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है बड़े बड़े, उनके पास कोई गोल्ड की या रियल इस्टेट की कोई एसेट्स नहीं है, उनको ढूंढिए, उनके ऊपर ज़कात लगाइए। और जो सड़कों पर लोग फिर रहे हैं इनको आप सदका कीजिए, सदका कीजिए, मना मत करें, रमज़ान का महीना है मत मना करें, पता नहीं किस उम्मीद से आपके सामने हाथ फैला रहा है। हम अल्लाह के सामने कितनी मर्तबा कितनी उम्मीदों से हाथ फैलाते हैं, और जब हमारी दुआ कबूल नहीं होती है तो हमें कैसा लगता है? गम होता है ना, तकलीफ होती है, बाज़ों का इंसान को अपने गुनाहों का एहसास होता है। जब कोई सामने खड़ा हुआ इंसान आपके सामने हाथ फैलाए, एक सेकंड के लिए सोचिए उसकी जगह मैं हो सकती थी, एक लम्हे के लिए सोचिए, इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप और मैं तसव्वुर नहीं कर सकते कि उस शख्स की जगह मैं खड़ी होती। तो अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो खिलाइए। वो लोग जो वही का ख्याल नहीं करते, वो लोग जिनके अंदर नरम दिली नहीं होती, वो जिनको दुनिया का लिमिटेड होना नजर नहीं आता, ये उनका कॉल होता है अनुत इमु मई मल्लव यशा अल्लाह अतअमा। क्या हम उनको खिलाएं? जिनको अल्लाह खिलाना चाहता तो खिला देता। मत कहें इन फकीरों को मांगने की आदत है। हाँ ये एक पूरा माफिया है, हाँ ये पूरे गैंग्स हैं, पेट तो सबके साथ लगा हुआ है ना। अगर आपको पैसा नहीं देना है तो अपनी गाड़ी में कोई भी चीज ऐसी ड्राई चीज लेकर रख लीजिए, जब कोई आए उसके हाथ में पकड़ा दें, दीजिए। क्या पता अल्लाह किसी साहिल के हाथ पर कुछ रखने की वजह से हमारी बख्शिश फरमा दे, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, हमारे रिस्क हलाल में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह ताला हमारे लिए इस कुरान के इल्म को अमल में एब्जॉर्ब करना आसान बना दे। अल्लाह हमें इस उम्मत को खड़ा करने वाली औरतों में शामिल फरमा दे। अल्लाह हमारे बच्चों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों के ऊपर अपना रहम नाजिल फरमाए। अल्लाह जहाँ जहाँ मुसलमान तकलीफ़ों में हैं, आजमाइशों में हैं, इब्तला में हैं, अल्लाह उनकी मुश्किलात दूर फरमा दे। बारकल्लाहु ली वलकुम फिल कुरान अल हकीम व नफ़ानी व इयाकुम बी आयाती व ज़िक्र अल हकीम। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैरन। आप लोगों के लिए हमने यहाँ एक बोर्ड रखा था, प्लीज़ जिन्होंने नाम नहीं रखे हैं अगर बोर्ड कहाँ है ज़रा बता दीजिए, ताकि जिन्होंने नाम और फ़ोन नंबर लिखने हैं वो लिखते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।